नमस्कार भारत, तारीख 11 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं हूं आदर्श राठौर। कैटलन राष्ट्रपति पुजिमोंट ने किए कैटलोनिया की आजादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, मगर संसद में नहीं किया ऐलान।
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat assumeixo en
presència... बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के बचाव में पीयूष गोयल के बाद अब राजनाथ सिंह भी उतरे। सुनाएंगे पारसी समुदाय की आबादी बढ़ाने के लिए चलाई गई जियो पारसी योजना पर विशेष रिपोर्ट।
और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ट्विंस है, तो मैं इतनी मतलब मुझे समझा ही नहीं मैं क्या रिएक्ट करूं। मैंने डॉक्टर को इतना टाइट पकड़ लिया तो डॉक्टर बोलने लगे कि मुझे हर्ट हो रहा है करके। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उनको बहुत जोर से कसा हुआ है।
होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। कैटलोनिया के स्थानीय राष्ट्रपति कार्लस पुजिमोंट और अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने स्पेन से आज़ादी की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव में नहीं आएगा और स्पेन की सरकार से बातचीत की जाएगी। अभी यह साफ नहीं है कि जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया है कि कैटलोनिया एक आज़ाद और संप्रभु देश है, उसका कोई कानूनी मायने है या नहीं। जिस घोषणा पत्र पर कैटलोनिया के नेताओं ने हस्ताक्षर किया है, उसमें कहा गया है कि हम सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हैं कि कैटलन गणतंत्र को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दें। दूसरी तरफ संसद में पुजिमोंट ने कहा कि लोग स्पेन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस मुद्दे पर तनाव को भी कम करना चाहते हैं। कैटलोनिया के नेताओं के इस कदम को स्पेन ने तत्काल खारिज कर दिया। स्पेन की उप प्रधानमंत्री ने कैटलोनिया के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि बुधवार को इस मामले में कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक होगी और पूरे संकट पर बातचीत की जाएगी। पूरे मामले पर स्पेन के न्यायमंत्री राफाल कातला ने कहा,
No podemos dar como válido un marco normativo una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
हम उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। देश के संवैधानिक कोर्ट ने पहले ही जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था। हम उस जनमत संग्रह को मान्यता नहीं दे सकते जिसमें गड़बड़ी की गई थी। ये थे राफाल कातला के शब्द। लाइबेरिया में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 70 सालों से ज़्यादा वक्त के बाद लाइबेरिया में पहली बार सत्ता का लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण हुआ है। देश के चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान बिना कोई बाधा के संपन्न हुआ। हालांकि धीमी शुरुआत के बाद कुछ लोग दोबारा वोट देते दिखे थे। मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। निवर्तमान राष्ट्रपति एलन जॉनसन सर्लीफ अफ्रीका की पहली चुनी हुई राष्ट्र प्रमुख हैं। एलन ने शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की थी। लाइबेरिया लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार संधि पर चौथे चरण की बातचीत से पहले मेक्सिको के विदेश मंत्री लुइस विदगेरे ने कहा कि अगर अमरीका इस संधि को तोड़ देता है तो सीमा पार संबंध बुरी तरह से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि खासकर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को काफ़ी नुकसान होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाफ्टा संधि को ख़त्म करने की धमकी दी थी और उसके एक दिन बाद मेक्सिको का यह बयान आया है। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग से अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग से हजारों लोग बेघर हुए हैं और अंगूर के बागों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग से सैन रोजा शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब हवा की रफ्तार कम हुई है जिससे आग पर नियंत्रण पाने में काफ़ी मदद मिल रही है। कैलिफोर्निया में अक्टूबर का महीना जंगलों में आग के लिए सबसे बुरा होता है। किनिया के राष्ट्रपति उहुरू किनियाटा ने कहा है कि वो इस महीने के आखिर में फिर से होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होंगे। हालांकि किनियाटा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी राइला ओदिंगा ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की बात कही है। राइला ने कहा कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा, इसलिए चुनाव आयोग को सुधार के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए। राइला ओदिंगा ने कहा,
वी शैल नॉट अलाउ एनीथिंग टू डैम्पन आवर मोरल।
हम लोग ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं देंगे जिससे हमारा मनोबल गिरे। हम लोग बहुदलीय लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हैं। हम लोग एक नए संविधान के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि 26 अक्टूबर को होने वाला चुनाव पहले से भी बुरा होगा। राइला ओदिंगा के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। स्पेन के कैटलोनिया के राष्ट्रपति कार्लस पुजिमोंट ने आजादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन अलग होने का फैसला स्पेन की सरकार से संवाद बनाए रखने के लिए टाल दिया। माना जा रहा था कि पुजिमोंट संसद में कैटलोनिया की आजादी का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रजनीश कुमार से।
मंगलवार शाम को सबकी नजर कैटलोनिया की स्थानीय संसद पर थी कि वो जनमत संग्रह के आधार पर कब आजादी की घोषणा करती है। कैटलोनिया के स्थानीय राष्ट्रपति कार्लस पुजिमोंट संसद को संबोधित करने पहुंचे तो सबकी सांसें थमी हुई थीं, मगर उन्होंने स्वतंत्र देश की घोषणा टाल दी। पुजिमोंट ने बार्सिलोना में स्थानीय संसद में जनमत संग्रह के प्रभाव को निलंबित कर दिया ताकि स्पेन से बातचीत शुरू की जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करते तो तत्काल अलग देश बनाने की घोषणा करनी पड़ती। पुजिमोंट ने स्थानीय संसद में कहा कि लोग स्पेन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर जारी तनाव को भी कम करना चाहते हैं। कैटलोनिया के राष्ट्रपति के रूप में इस ऐतिहासिक मौके पर मैं कैटलन नागरिकों की स्वतंत्र देश की चाहत के साथ हूँ। कैटलोनिया के नेता ने कहा कि हमें आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके नागरिकों को स्पेन की सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने जनमत संग्रह की सराहना की और स्पेनिश सरकार की कार्रवाई की निंदा की। पूरे कैटलोनिया के लोग बार्सिलोना की स्थानीय संसद में पुजिमोंट का भाषण टीवी पर देख रहे थे। पुजिमोंट के फैसले पर कैटलोनिया में मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों को उनके रुख से निराशा भी हुई है। लेफ्ट विंग CUP पार्टी ने कहा कि पुजिमोंट ने ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया है। आजादी समर्थक पार्टी रिपब्लिकन लेफ्ट ऑफ कैटलोनिया के जोसेफ मारिया ने बीबीसी से कहा,
I do think that he wants to show what we repeated 100 times, namely,
मैं सोचता हूं कि पुजिमोंट वही दिखाना चाहते हैं जो हमने 100 बार किया है, मतलब हम स्पेनिश सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। अब साफ है कि हम यूरोप में एक स्वतंत्र देश चाहते हैं, लेकिन इसे स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग स्पेन को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये थे जोसेफ मारिया के शब्द। पहले पुजिमोंट कहते थे कि हर हाल में अलग जनमत संग्रह करवाएंगे और अलग देश का ऐलान करेंगे, मगर अब वह इस फैसले के लिए वक्त लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से मध्यस्थता के संकेत मिलने की भी बात कही। इससे साफ है कि स्पेन के टूटने का खतरा टला नहीं है। पुजिमोंट पर न सिर्फ आजादी समर्थक पार्टियों बल्कि स्पेन का भी दबाव बना हुआ है। स्पेन के वित्त मंत्री लुई डी ग्विंडोस ने यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पुजिमोंट को चेताते हुए कहा, पूरा यूरोप स्पेन की एकता के साथ है। यह केवल स्वतंत्र देश के लिए हाँ और ना की बात नहीं है, बल्कि संविधान के खिलाफ विद्रोह है। ये थे लुई डी ग्विंडोस के शब्द। कैटलोनिया के रुख को लेकर यूरोपियन यूनियन भी हरकत में आ गया है। EU ने साफ कर दिया है कि अगर कैटलोनिया स्पेन से अलग हुआ तो उसे यूरोपियन यूनियन से भी अलग होना पड़ेगा। कैटलोनिया सदियों से स्पेन का एक राज्य है, लेकिन उसकी अलग भाषा अलग संस्कृति है। इस आधार पर उसे स्पेन के संविधान में स्वायत्तता मिली हुई है। बार्सिलोना से बीबीसी के टॉम बरीज बताते हैं कि कैटलन सरकार और स्पेन की सरकार के बीच असाधारण तरीके से चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। ऐसे में संकट अभी टला नहीं है।
ये थे रजनीश कुमार। स्पेन सरकार ने कैटलन नेता पुजिमोंट के बयानों को अस्वीकार्य बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। कुछ देर पहले मैंने पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने से बात की और पूछा कि यह मामला किस दिशा में जाता दिख रहा है और पुजिमोंट के रुख में नरमी की वजह क्या रही।
उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा पड़ा था क्योंकि बार बार उन्हें यूरोपियन यूनियन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जैसे डोनाल्ड टस्क है या जॉन क्लॉड जुंकर हैं, उनसे टेलीफोन आई हुई थी। उनके ऊपर उनके खिलाफ मतलब थोड़ी थ्रेट्स भी आ गई थी कि अगर आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो तो हम कैटलोनिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना बंद कर देंगे। और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इकोनॉमिक भी था क्योंकि काफी सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बार्सिलोना से निकालने शुरू कर दिए थे।
ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था बहुत इवेंटफुल पिछला दौर रहा। भविष्य में पूरा मामला ये किस दिशा में जाते हुए देख रही हैं आप?
देखिए, इस वक्त तो बहुत सिचुएशन जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की गहराइयां है। एक है कि कैटलोनिया में जो रीजनल गवर्नमेंट है वो पूरी कोलिशन में है। ज्यादातर जो भी पार्टियां मिली हैं उनके साथ एक चीज जो उन्हें इकट्ठा लाती है वो ये आइडिया है कि हमें स्पेन से इंडिपेंडेंस लेना है। तो मिस्टर प्यूजबों के लिए भी उनकी जो सिचुएशन है काफी कठिन है। अगर वो इंडिपेंडेंस के ऊपर दावा छोड़ दे तो उनकी कोलिशन जो है वो गिर जाती है। उसी वक्त उन्होंने मैड्रिड की तरफ भी सोचना है कि अगर ऐसे कोई कदम उठाएं जो काफी इरेस्पॉन्सिबल हो, तो हमने देखा है जिस तरह से 1 अक्टूबर को पुलिस आके 1300 व्यक्ति घायल हो गए उस पुलिस एक्शन में, तो मैड्रिड का उस वक्त ये सिग्नल था कि अगर आप ऐसे कोई कदम उठाओ जिससे आप सेपरेटिज्म की तरफ बढ़ो तो हम बिल्कुल कठोरता से आपके साथ बर्ताव करेंगे। तो इस वक्त मैड्रिड का कहना है कि इन्होंने जो सेपरेशन की डिमांड है वो अलग रखनी चाहिए और टेबल पे आना चाहिए निगोशिएट करने के लिए। मैड्रिड कहता है कि हम ब्लैकमेल और इस तरह की थ्रेट्स के साथ हम टेबल पे नहीं आएंगे।
यानी कैटलोनिया को लेकर विवाद अभी जारी रह सकता है। न्यूज वेबसाइट द वायर में छपी एक खबर पर हंगामा अब भी जारी है। वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह का कारोबार कई गुना बढ़ गया। हाल के दिनों में दूसरी बार गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमकर घेरने की कोशिश की।
कमाल की बात है भैया, कंपनी पुरानी थी, 50,000 रुपए बैंक में थे। 2014 में पता नहीं क्या हुआ, मोदी जी की सरकार आई, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया, 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए उस कंपनी का बन गए महीनों में। और फिर 2016 में कंपनी बंद कर दी। अब पूरी की पूरी सरकार, पहले बेटी बचाओ था, अब नया प्रोग्राम निकाला है पीयूष गोयल कर रहे हैं, बेटा बचाओ प्रोग्राम।
कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए है। इस मामले में कांग्रेस के आरोपों पर पहले केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सफाई दी थी, मगर अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जांच की जरूरत नहीं है। इस पर हरिता कांडपाल ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन से संपर्क किया और पूछा कि क्यों एक वरिष्ठ मंत्री को इस मामले में बचाव में उतरना पड़ रहा है।
ये इसकी एक बहुत पुरानी भूमिका है। आपको अगर याद होगा कि 2014 में जब ये सरकार बनी तो चंद महीनों में ऐसे खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के जो पुत्र हैं, जो हाल ही में गाजियाबाद से एमएलए हैं पंकज सिंह, उनसे असंतुष्ट थे क्योंकि उन पे कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, आरोप नहीं शिकायतें आ रही थी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह के लिए कुछ डील्स वगैरह कर रहे थे। और ये भी इकोनॉमिक टाइम्स में रोहिणी सिंह, जिन्होंने जय शाह के बारे में लिखा, उन्होंने ही ये रिपोर्ट भी लिखा था। फिर उसके बाद तुरंत बाद उसी दिन पीएमओ को एक बयान जारी करना था कि वो उस रिपोर्ट में कोई आधार नहीं है। और 2 दिन के बाद अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया यही रोहिणी सिंह को, लंबी इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बहुत साफ किया कि राजनाथ सिंह के या उनके बेटे कोई शक के दायरे में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी से संकेत जरूर आया कि कुछ खटास सा हो गया था मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी के बीच में। तो इस वक्त राजनाथ सिंह जी को ये बयान देते हुए जय शाह को डिफेंड करना मुझे लगता है कि बहुत ही अहम है। और इस भूमिका में ये बयान देना मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर से बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
राहुल गांधी ने कहा कि बेटी बचाओ से अब जो है बेटा बचाओ तक पहुंच गई है बीजेपी, और इसी तरह से अमित शाह के बेटे पर सवाल उठे। इससे पहले चुनाव के वक्त राजनाथ सिंह के बेटे की बात हुई, तो अब जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए ये पूरा जो मामला है ये मुश्किल खड़ी कर सकता है?
जरूर मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके वोट घटेंगे या बढ़ेंगे, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक जो परसेप्शन है, पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है, फैक्ट्स, तो एक परसेप्शन बीजेपी का क्या रहा मुद्दा कि हमारी सरकार जो है वो भ्रष्ट मुक्त सरकार है, हमारी सरकार जो है वो वंश मुक्त सरकार है। अब आप ये दोनों अगर लें तो दोनों स्कोर में ये जय शाह का जो मामला है वो थोड़ा, ये जो दोनों क्लेम है बीजेपी की, दावे जो है वो लड़खड़ाता है। एक तो उनके पुत्र हैं, पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अमित शाह के पुत्र होने के कारण थोड़ा तो उनको बेनिफिट मिला है। आप और हम अगर लोन लेने जाएंगे तो कोई देता नहीं है, अगर आप सॉलिड कोलैटरल्स नहीं दिखाते हैं तो लोन कहाँ मिलता है। और गुजरात के लोग जो है, मैं हमेशा, नवनिर्माण का जो मूवमेंट है 70s में, वो सबसे सफल तो हुआ है गुजरात में, और वो भी चिमन भाई के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जो भ्रष्टाचार या जो रॉन्ग डूइंग है वो गुजरात के जनता के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही क्लिक होता है। तो हमें देखना होगा कि ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसमें इसकी इम्पैक्ट क्या होती है, बहुत दिलचस्प बात होगी।
वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है रजनीश। रजनीश, क्या खास है आज के अखबारों में?
आज कई खबरों को, कई अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है, जैसे राहुल गांधी का गुजरात दौरा, उस पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी और अमित शाह एक दूसरे के गढ़ से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। इसके साथ ही एक बड़ी दिलचस्प खबर, जो कि केरल हाई कोर्ट के जज की जो टिप्पणी है उसको इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है। उसमें लव जिहाद पर केरल हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है। एक अंतरधार्मिक विवाह का मामला था जो कि केरल हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हर शादी को आप लव जिहाद के दायरे में नहीं रख सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता अनीस अहमद ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनकी पत्नी श्रुति, जो कि हिंदू मजहब से आती हैं, उनको परिवार वालों ने बंधक बनाकर रखा है और कोर्ट उनको रिहा करवाने की अनुमति दे ताकि हम दोनों साथ रह सके। दूसरी खबर है मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर। मेट्रो का किराया बढ़ाया गया, इसे लेकर राजनीतिक हंगामा भी हो रहा है, लोगों के जेब पर भी असर पड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन सरकार ने किराया बढ़ाया है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि लोग अब मेट्रो को छोड़कर बसों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि बसों का किराया जो है मेट्रो के मुकाबले कम है। जैसे कि आपको पता होगा कि मेट्रो का किराया मिनिमम 20 रुपये है और अधिकतम बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है।
जी।
हिंदुस्तान टाइम्स ने मेट्रो से जुड़े मेट्रो किराए बढ़ाने की खबर को बताया है कि इसके खिलाफ बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है ABP, उसने भी विरोध किया है इस मेट्रो में किराए बढ़ाने के खिलाफ। नवभारत टाइम्स ने गुजरात दौरे में राहुल गांधी की उस टिप्पणी को बड़ी प्रमुखता से छापा है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ की जब शाखा लगती है तो उसमें जो स्वयंसेवक होते हैं वो निक्कर पहनकर जाते हैं, क्या महिलाओं को भी निक्कर पहनने की अनुमति मिलेगी
जी।
तो ऐसे कई प्रमुख खबरें जो कि,
शुक्रिया रजनीश अखबारों की समीक्षा के लिए। भारत में पारसी समुदाय की लगातार घटती संख्या पर चिंता जताई जाती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 57,000 से थोड़ी ही ज्यादा है। भारत सरकार और पारसी समुदाय के लोगों ने 2013 में जियो पारसी नाम की एक योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद था पारसियों को जल्द शादी और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए राजी करने का। मगर क्या इसमें कामयाबी मिल पाई है, यही जानने के लिए BBC संवाददाता जुबैर अहमद पारसियों के शहर मुंबई पहुंचे। सुनिए उनकी विशेष रिपोर्ट।
ढाई साल का मेहरजाद दोती वाला अपने 8 साल के भाई जरसिक्स और अपनी माँ के साथ खेल रहा है। जरसिक्स की पैदाइश किसी दिक्कत के बगैर हुई थी, लेकिन मेहरजाद के जन्म में बड़ी परेशानी हुई। ये कहना सही होगा कि अगर जियो पारसी योजना नहीं होती तो शायद मेहरजाद का जन्म नहीं होता। उसकी माँ फरीदा दोतीवाला है।
First, I thought that it was a very good thing helping couples who cannot.
मैंने पहले सोचा कि जिन जोड़ों को बच्चे पैदा नहीं हो सकते या बच्चे पैदा होने में कठिनाई हो रही है उनके लिए ये एक अच्छी योजना है। इस मुहिम से मैं अवश्य प्रभावित हुई और जियो पारसी के कारण ही आज मैं दूसरे बच्चे की भी माँ हूँ।
جیو پارسی پارسیوں کی تیزی سے گھٹتی آبادی کو روکنے اور سمودائے کی آبادی کو بڑھانے کی ایک مہم ہے جو کیندری سرکار کی مدد سے 2013 میں شروع کی گئی تھی۔ فی الحال پارسیوں کی کل آبادی 57,000 کے قریب ہے۔ کئی بار کی کوشش کے بعد ناکام ہوئی فریدہ نے جیو پارسی کی مدد لی۔ آئی وی ایف جیسے علاج کے بعد مہرزاد کا جنم ہوا۔ علاج میں 5 لاکھ کا خرچ آیا جس کی ادائیگی جیو پارسی نے کی۔ پارول اور ان کے پتی ایس پی نے بھی یوجنا کا لابھ اٹھایا۔ پارول گربھوتی ہیں اور اگلے مہینے وہ جڑواں بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ 45 سال کی عمر میں پہلی بار ماں بننے کی خوشی کا وہ بھرپور اظہار کرتی ہیں۔ جب ان کے ڈاکٹر نے انہیں جڑواں بچے کی پہلی بار خبر سنائی تو اس کے بعد ان کی پرتکریا کیا تھی، انہیں کی زبانی سنیے۔
جب ڈاکٹر سونوگرافی کے لیے بلائے، جب رزلٹ پازیٹیو تھا اور انہوں نے سونوگرافی کے لیے بلائے، تو جب سونوگرافی کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ٹوینس ہیں، تو میں اتنی مطلب مجھے سمجھا ہی نہیں میں کیا ریئیکٹ کروں۔ میں نے ڈاکٹر کو اتنا ٹائٹ پکڑ لیا تو ڈاکٹر بولنے لگے کہ مجھے ہرٹ ہو رہا ہے کر کے۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے ان کو بہت زور سے کسا ہوا ہے۔ میں نے بولا سوری، میں بہت خوش تھی۔ جیسے بولتے ہیں نا، اندھا ایک آنکھ مانگتا ہے اور اوپر والا دو دے دیتا ہے۔
کیندری سرکار کی طرف سے 10 کروڑ روپے کی مدد سے شروع کی گئی جیو پارسی یوجنا دو مدوں کو لے کر مہم چلا رہی ہے۔ غیر شادی شدہ پارسیوں کو جلد شادی کرنی چاہیے اور ادھک بچے پیدا کرنے چاہیے۔ بچہ پیدا کرنے میں اگر علاج کی ضرورت پڑی تو جیو پارسی کی طرف سے 5 لاکھ روپے کی مدد دی جاتی ہے۔ سرکار نے یوجنا کی 5 سال کی مدت میں 200 بچوں کے جنم کا ٹارگٹ رکھا تھا۔ کیا یہ پورا ہوا؟ ممبئی میں اس یوجنا کو چلانے والی پارسی مہیلا کیٹی گنڈیویا کہتی ہیں،
جو گورنمنٹ نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا 200 بچے اگلے 5 سال میں، لیکن ایکچوئل پروگرام تو 3.5 سال سے ہی چلا ہے، تو جو 200 بولے تھے لیکن ہمارے ابھی 110 تک پہنچے ہیں ہم لوگ۔ 50% سے تھوڑا ہی زیادہ ہوا ہے۔ اس کے 2-3 کارن ہیں۔ ایک تو اتنے بچے پیدا کرنے والی عمر والی عورتیں بھی ہونی چاہیے نا، اور جن کے پاس آلریڈی بچے ہیں ان کو دوسرا بچہ لانے کی بھی مرضی ہونی چاہیے۔
اس یوجنا کو سب سے پہلے آگے بڑھانے والی ساماجک کارکرتا شہناز کاما تھی۔ ان کے انوسار یوجنا پارسیوں کی آبادی بڑھانے میں کامیاب رہی ہے۔
جیو پارسی اسکیم میں یہ 3 سال میں ہمارے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ 110 نمبر ہے، مگر وہ اگر آپ گنو گے تو ہر سال میں صرف 200 بچے جنم ہوتے تھے، تو یہ پرسنٹیج وائز قریب 17-18% بڑھائی ہوئی ہے، تو وہ اچھی بات ہے۔ مگر اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ آج ہر ایک پارسی گھر میں جیو پارسی کا نام آج سب لوگ جانتے ہیں۔
جیو پارسی مہم کی شروعات سے پہلے ہر سال 800 پارسیوں کی مرتی ہوتی تھی جبکہ 200 بچے پیدا ہوتے تھے، اب 240 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جیو پارسی کے کارن ہر سال 40 ادھک بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس یوجنا کی پارسی سمودائے میں سویکرتی تو ہے، لیکن اس کی آلوچنا کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ بلاگر سمن پٹیل ان میں سے ایک ہیں۔
آئی تھنک دیر آر سیورل ویز ٹو ایڈریس دیٹ وداؤٹ مینوفیکچرنگ دیز چلڈرن ان دس فیشن۔
میرے وچار میں بچوں کو اس طرح سے پیدا کرانے کے بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پارسی ماں اور غیر پارسی پتا کے ہزاروں ایسے بچے ہیں جو قانونی طور سے پارسی سویکار نہیں کیے جاتے اور جنہیں پارسی سمودائے پارسی نہیں مانتا، تو اگر ہم ان بچوں کو قانونی اور سماجک طور پر پارسی سمودائے میں شامل کرنا شروع کر دیں تو پارسیوں کی آبادی ہزاروں کی سنکھیا میں بڑھ جائے گی۔
ممبئی کی ایک عمارت میں ایک ہی چھت کے نیچے پارسیوں کی 3 نسلیں ایک ساتھ ہیں اور یہاں کوئی گیم چل رہا ہے۔ اتیت میں اس طرح کی بیٹھک کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی، اب یہ ایک عام منظر ہے۔ جیو پارسی پارسی سمودائے کو ایک دوسرے سے ملانے اور کئی طرح کے ساماجک کارکرم کا آیوجن کرتی ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ملیں اور غیر شادی شدہ یووا ایک دوسرے کو پسند کریں اور شادی کریں، لیکن ان کوششوں کے باوجود آبادی میں ادھک بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ سمودائے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آبادی کے بڑھنے میں کئی نسلیں لگ جائیں گی۔ زبیر احمد، بی بی سی، ممبئی۔
بھارتی نوسینا نے ایک سیلر کو سیکس بدلوانے کی وجہ سے برخاست کر دیا ہے۔ نیوی میں وشاکھاپٹنم میں تعینات سیلر منیش سیکس چینج کروا کر مہیلا بن گئے ہیں، اب ان کا نام سبی ہے۔ नौसेना ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सेक्स बदलवाकर मनीष गिरी ने नौसेना की नौकरी के लिए अपनी योग्यता खो दी है। बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह ने सभी से बात की और पूछा कि नौसेना ने बर्खास्त करते हुए पत्र में क्या वजह बताई है।
उसमें मतलब लेटर में यही कहा गया है कि एज एक पॉलिसी है सेलर नो लंगर रिक्वायर्ड, उसके तहत मेरे को डिस्चार्ज किया गया है। आपने 7 ईयर 7 साल तक जितना दिन सेवा करनी थी सर्विस करनी थी कर ली, अब आपकी जरूरत नहीं।
तो ये जो डिस्चार्ज पेपर आपको दिया गया है उसमें क्या कोई कारण नहीं बताया गया है आपको?
कारण यही है तो लिखा गया है कि SNLR मतलब आपकी जरूरत नहीं है, नो लंगर रिक्वायर्ड। आई डोंट नो उनका पॉलिसी कौन सा है, मे बी इसमें क्या है कारण। मैंने जेंडर चेंज की है मतलब सेक्सुअल सेगमेंट सर्जरी करी है मैंने, इसके लिए वो लोग मेरे को टर्मिनेट किए हैं।
ऐसी भी खबरें आ रही थी कि नेवी ने जो है कि आपको एक साइकेट्रिक वार्ड में भी रखा था 6 महीने के लिए।
हाँ आई एम टेलिंग यू मेरे को साइकेट्रिक वार्ड में जब मैं अपना सर्जरी मेरा जो हुआ था दिल्ली में, तो सर्जरी कराकर उस टाइम मैं तो छुट्टी पे थी राइट, और छुट्टी से हाँ मतलब ड्यूरिंग लीव मैंने अपना सर्जरी करवाई और रिटर्न आने के बाद मेरे को इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया सर्जिकल एरिया में, तो मेरे को नेवी के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो 1 मंथ तक सर्जिकल वार्ड में मेरे को रखे और मेरा इन्फेक्शन जो था वो सही हो गया, एंड उसके बाद वो लोग मेरे को साइकेट्रिक वार्ड में रखे और ऑलमोस्ट 5 मंथ तक साइकेट्रिक वार्ड में कन्फाइन करके मतलब जस्ट लाइक ए जेल की तरह। उनको ये भी पता था कि मैंने सेक्सुअल सेगमेंट सर्जरी करी है तो मैं मेल नहीं हूँ, फिर भी मेल स्क्वाड के साथ 24/7 मेल गार्ड के साथ कन्फाइन करके मेरे को रखे थे।
ये बताइए सभी कि आपको कब लगा कि आपको जो है अपना सेक्स चेंज करवाना चाहिए, ये कब आपको फीलिंग आई?
हाँ ये फीलिंग मैंने 2010 में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी नेवी, 2011 में मेरा ऐसा फीलिंग्स होने लगा, ज्यादा होने लगा। उसके पहले मतलब कम था बट ज्यादा होने लगा, मुझे लगा कि नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब मेरा जो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं सुसाइड कमिट कर लूँ ऐसा, मतलब रात को सोते टाइम नींद नहीं आने लगा मुझे। तो उस टाइम मेरा पोस्टिंग था मुंबई में, तो मैंने सोशल साइट के फेसबुक के थ्रू इस तरह के लोगों से मैंने कंटेक्ट करी वहाँ मुंबई में, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बोले कि मतलब तब हमको लगा कि मैं अकेला नहीं और भी लोग हैं ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर आया मेरा विशाखापट्टनम INS तक्षशिला में, आने के बाद मैंने अपने CEO को बताई INS तक्षशिला के कमांडिंग अफसर को कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, आप प्लीज हमको हेल्प कीजिए आप लोग। तो अगेन वो साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिए कि आप काउंसलिंग करवाइए, तो फिर वही बात, फिर वही सेम कहानी, कोई मतलब सोल्यूशन नहीं। तब जाके लास्ट में मैं मतलब मैंने सोची कि मेरे को अपना जिंदगी वेस्ट नहीं करना है, यानी सुसाइड नहीं करना है। सिविल में मैंने जाकर कंसल्ट करी साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट से, तब वो लोग बोले कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं उसको।
सभी का कहना है कि वो नौसेना से अपनी बर्खास्तगी को सेना की अदालत में चुनौती देंगी। रुख करते हैं खेल समाचारों का। मंगलवार को खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने 119 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर और 2 गेंदों में हासिल कर लिया। और आखिर में विश्व समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। कैटेलोनिया के स्थानीय राष्ट्रपति कार्लस पुजीमुंट और अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने स्पेन से आज़ादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि इन्होंने कहा कि यह तत्काल प्रभाव में नहीं आएगा और स्पेन की सरकार से बातचीत की जाएगी। लाइबेरिया में संपन्न हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 70 सालों से ज़्यादा वक्त के बाद लाइबेरिया में पहली बार सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। ग्रीक की संसद ने लिंग परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक कानून पास किया है जिसके तहत लोग बिना मेडिकल जांच या सेक्स चेंज ऑपरेशन के अपना लिंग चुन सकेंगे। इसका फायदा 15 साल से ज़्यादा उम्र वालों को मिलेगा। हालांकि इस फैसले का चर्चों और रूढ़िवादी नेताओं ने विरोध किया है। हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन ने 3 महिलाओं के साथ रेप करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो द न्यूयॉर्कर मैगजीन के दावों को अस्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रही थी भूमिका। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।